आवृत नहीं है।
तो प्रवेश करने में अब चाबी जो हो, ताला तोड़ो, ये करो वो करो, खुला दरवाजा है। साधारण तरीके से भी आदमी प्रयास करे तो भक्ति कर सकता है। तो क्या दिक्कत है भगवान का नाम जपने में, भगवान का प्रसाद खाने में, प्रणाम करने में कोई दिक्कत है? तो खुला दरवाजा है वो वैकुंठ जाने का, लेकिन लोग नहीं करते हैं। तो जो मनुष्य शरीर पा करके भजन नहीं करता है उसको विद्वान लोग आरूढ़ च्यूत कहते हैं, बहुत ऊपर से गिर रहा है, बहुत बड़ा घाटा होगा, अधम जोनिया मिलेंगी, बहुत बड़ा चांस चला जाएगा। तो इस प्रकार इस कथा के द्वारा भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि किसी के प्रति संसार में अति स्नेह नहीं करना चाहिए, अति आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अपनी मति को भगवान कृष्ण में लगाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण उवाच। सुखमैन्द्रियकं स्वर्गे नरक एव च, देहिनां यद्यथा दुःखम् तस्मान्निच्छेत तद्बुधः। सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च, देहिनां यद्यथा दुःखम् तस्मान्निच्छेत तद्बुधः। तस्मान्निच्छेत तद्बुधः। ग्रासं सुमिष्टं विदसां महान्तं स्तोकमेव वा, जदृच्छैवा पतितं ग्रसेद आजगरो क्रियः। शयितानि भूरिणि निराहारोऽनुपक्रमः, यदि नोपनमेत् ग्राशो महाहीरिव तिष्ठभो। ओजः सहो बलयुतम् बिभ्रद्देहमकर्मकम्, शयानो वीतनिद्रश्च नेहेतेन्द्रियवानपि। मुनिः प्रसन्न गम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः, अनन्तपारो यक्षोभ्यः स्तिमितोदायि वार्णवः। संवृद्धकामो हीनो वा नारायण परो मुनिः, नोत सर्पेत न सुस्येत, नोत सर्पेत न सुस्येत सरिद्धिरिव सागरः। दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः, प्रलोभिता पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतङ्गवात्। योऽसि हिरण्याभरणाम्बरादि द्रव्येषु माया रचितेषु मूढः, प्रलोभितात्मा हिपभोगबुद्ध्या पतङ्गवन्नस्यति नाष्टदृष्टिः। स्तोक तम स्तोकम ग्रसे देहो ग्रस स्तोकम स्तोकम ग्रसे ग्राशाम देहो वर्तेत यावता गृहान हिंसन आतिष्ठे वृत्ति माधुकरी मुनि अनुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्य कुशलो नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः सायन्तनं स्वस्तनं वा सायन्तनं स्वस्तनं वा न संगृहीत भिक्षिताम् पाणिपात्रोदरामत्र मक्षिकेव न संग्रही सायन्तनं स्वस्तनं वा न संगृहीत भिक्षुकः मक्षिकायुव संगृह्णन् स तेन विनश्यति पदापि ज्योतिम् भिक्षुः न स्पृशेद्दारणीमपि स्पृशन् करीव बध्येत करिण्यायङ्गसङ्गतः नाधिगच्छेत् स्त्रियम् प्राज्ञः करिचिन् मृत्युमात्मनः बलाधिकैः स हन्येत गजैः अन्यैर्गजो यथा न देयम् नोपभोग्यम् च लुब्धै जद्दुःखसञ्चिताम् भुङ्क्ते तदपि तच्चान्य मधुवे वार्थवि मधु सुदुःखोपार्जितैर्वित्तैः आशासानाम् गृहाशिषः मधुवेवाग्रतो भुङ्क्ते जतिर्वै गृहमेधिनाम् ब्राह्मण वाच ब्राह्मण अवधूत ने कहा सुखाम सुख ऐन्द्रियकाम इंद्रियों से अनुभूत होने वाला राजन हे महाराज चलो स्वर्गे स्वर्ग में नरके नरक में एवा ही समान रूप से च और देहिना देहधारियों को जो जथा जैसे दुखम दुख तस्मा इसलिए न इच्छे इच्छा करे तद इंद्रियक सुख के लिए बुधः विद्वान अथवा तद बुधः बिना इच्छा और प्रयास के ही इंद्रिय सुख मिल जाता है सब जगह इसको जानने वाला अष्टमे अजगराविद्यो नवभ्यः शिक्षितम् हरिः अवधूत गिरा प्राह विवो विवेकायोद्धवम् प्रति इस अष्टमे अध्याय अजगर से प्रारंभ करके और पिंगला पर्यंत नौ गुरुओं से सीखी हुई बात को भगवान श्री कृष्ण अवधूत के वचन से उद्धव जी को विवेक के लिए कह रहे हैं। विवेक आया मतलब विवेक है, विवेकम जनयितुम, विवेक उत्पन्न करने के लिए। विवेक का क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक ठीक जो बुद्धि का निर्णय होता है इसको विवेक का। तो इस आठवें अध्याय में नौ गुरुओं के मुख से, नौ गुरुओं के आचरण से शिक्षा ली गई है। और कितने गुरुओं की शिक्षा बीत गई? आठ, और इसमें नौ, और अगले अध्याय में सात गुरुओं के मुख से, मुख से नहीं उनके आचरण से शिक्षा ली जाएगी। सावधानी से सुनिए, क्योंकि इसमें महाराज जदु को संबोधन किया गया है। राजन, हे राजन, राजन इति राज्यस्य अति विषय सुख सुखम अंतःपातित्वेन हेयत्वम इति भाव। तो भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं, हे राजन, इंद्रियकम सुखम स्वर्गे नरके च सुलभ भवति यथा दुख। जिस प्रकार देहधारियों को सब जगह दुख मिलता है और अपने आप बिना प्रयास के दुख के लिए कभी कोई उपाय नहीं करते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, ना तो दुख चाहते हैं देहधारी प्राणी, लेकिन दुख अपने आप आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रारब्ध है पहले का पाप है, प्रारब्ध है, तो उसके चलते दुख आएगा। नहीं चाहने पर भी, नहीं बुलाने पर भी, कोई उपाय नहीं करने पर भी दुख आ जाता है। इसी तरह जब प्रारब्ध के पास दुख आ रहा है तो प्रारब्ध के पास सुख भी आएगा, क्योंकि दोनों तरह का कर्म जीव किया है, अपने आप आएंगे। इसलिए तद्बुधः, इस बात को जानने वाला कि ये सुख है या दुख है, प्रारब्ध के अधीन है, वो मिलेंगे, अतः उसके लिए, सुख के लिए न इच्छे, तो इच्छा न करे कि हमें मिले, ये मिले, वो मिले, क्योंकि बिना इच्छा के ही मिलेगा, और नहीं प्रारब्ध में है तो इच्छा करने से भी नहीं मिलेगा। जो अपने आप मिलने वाला है उसका चिंतन क्या करना है, क्या इच्छा करनी है, और फिर प्रयास करने की तो बात ही नहीं, प्रयत्न करना, जुगाड़ करना। जैसे आदमी पैसा कमाने के लिए उपाय कर रहा है, अन्न उत्पन्न करने के लिए उपाय कर रहा है, और कई कई तरह का उपाय कर रहा है, इसको यत्न कहते हैं, काम धंधा करना, प्रयास करना। तो इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, फिर प्रयास करने की तो बात बहुत दूर। इन इंद्रियकम सुख, इंद्रियों से जो उत्पन्न होता है सुख, वास्तविक सुख उसको भगवान नहीं कह रहे हैं, इंद्रियकम सुखम कह करके उसके सुखत्व का बाध कर रहे हैं। तो सुख नहीं है, लेकिन इंद्रियों का ऐसा अनुभव होता है कि यह सुख है। जैसे आंख कोई सुंदर रूप देखती है तो सोचती है कि मैं सुखी हो रही हूँ, जिह्वा कोई चटकदार पदार्थ खाती है तो सोचती है कि मैं सुख ले रही। एक अनुकूल वृत्ति का उदय होता है मन में और इंद्रियों में, इसको सुख कहते हैं, लेकिन वह भ्रांति। लेकिन जो कुछ भी हो, अगर उसको कोई सुख ही मानता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस सुख के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए और न जत्न करना चाहिए, क्योंकि जैसे बिना बुलाए दुख आते हैं उसी तरह से सुख भी आएंगे, अनेक प्रकार के सुख, ये प्रयास नहीं करना चाहिए, यह शिक्षा है। प्रारब्ध कर्म भोगस्य अवश्यम भावित्वा तदर्थो व्यमय नायु देय वृथा कर्तव्य इति अजगर शिक्षितम इत्यासुकम इत्यादि। प्रारब्ध कर्म भोगना ही पड़ता है, अतः प्रारब्ध भोग के अधीन प्रारब्ध कर्म के अधीन रहने वाला सुख अपने आप मिलेगा। अतः सुख प्राप्ति के लिए बहुत बहुत उद्यम करके आयु को वृथा नष्ट नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति में आयु को बिताना चाहिए। यह शिक्षा अजगर की वृत्ति से, अजगर के आचरण से मैंने लिया है, भगवान यह बता रहे हैं। आइंद्रियकम इंद्रिय प्रभवम सुखम जथा स्वर्गे भवति तथा नरके अपि भवति। स्वर्ग में जितने सुख है वास्तव में नरक में भी सुख है। नरक में भी प्राणी को, नरक मतलब नारकी जो निसुअर आदि के शरीर में, वो सुलभ है। ऐसा अपनी अपनी मान्यता है कि इंद्र को रंभा या उर्वशी का आलिंगन करके जो सुख होता है वही सुख एक सुअर को मलमूत्र लिपटी हुई, मलमूत्र से लिपटी हुई सुअर कालिंग सुअरी कालिंगन करके होता है। कोई सुखानुभूति में भेद नहीं है। या जो प्रसिद्ध नरक है वहां भी प्राणी को कुछ देर के लिए सुख मिलता है। मारपीट करते हैं जब राज के दूत और कभी कुछ खाने को दे दिए तो उसी में सुख मानता है थोड़े देर के लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि किसी अपराधी को नदी के जल में डुबाया जाता है, राजा के कर्मचारी डुबाते हैं, परंतु थोड़े देर के लिए उसको ऊपर लाते हैं जल से तो सोचता है ओहो बहुत आराम मिल गया, लेकिन फिर उसको डुबाते हैं। तो सुख की जहां तक बात है वो सब जगह सुलभ है, जैसे दुख जथा दुख। नरके मतलब शुक्रादि नारक्याम योनौ अपि पुत्र कलत्रादि सुख दर्शनार्थ। देखा गया है कि सुअर आदि को भी पुत्र के स्पर्श का या स्त्री के स्पर्श का परिवार चलाने का सुख मिलता है, वो भी सुखी रहते। कल हम लोग देख रहे थे शाम को दो सियार सियार बड़े तंदुरुस्त। भक्त वापस में सोचने लगे ये क्या खाते हैं, कहां से भोजन मिलता है। प्रारब्ध दे रहा है, कहीं ना कहीं से खा करके ही तो उतना तंदुरुस्त थे और निश्चिंत हैं। उनको न खाद जुटाना है, न बीमार होने पर डॉक्टरी में जाना है, कुछ नहीं, और घर द्वार अपने आप खान करके तैयार किए रहते, मेर में घर बना करके रहते। जब सियार आवाज करते हैं तो हमेशा दुख से ही आवाज नहीं करते हैं, कभी कभी खुशी से हुआ हुआ करने लगते हैं, इतने मस्त। और कुत्ते भी खुशी से नाचते हुए देखे जाते हैं, सुअर भी खुशी से नाचते हुए देखे जाते हैं, बल्कि मनुष्य उतना खुश नहीं रहते, हमेशा चिंता में लगे रहते। हाँ, दूसरे का सुख देखकर जलते भी, ये पशुओं में ये बात नहीं। तो सियार और सुअर गधा कुत्ता ये सब भी सुखी देखे जाते, वहां भी सुख मिल जाता, क्योंकि सुख सब प्रारब्ध के अधीन है। स्वर्गे नरके वचन ये वह शब्द है, यह कारण नरक और स्वर्ग में भेद नहीं है। जो सुख लिखा है प्रारब्ध में मिल जाएगा, प्रयास से कुछ नहीं मिलता है, पहले के कर्म के अनुसार मिलता है। तो अब इस समय जो अपने आप मिलने वाली वस्तु है उसके फेरे में पड़ करके अपना समय बिताना ठीक नहीं, तो क्या फायदा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी यह चिंता करने लगे कि कब हमको कलरा होगा, कब बीमार पड़ूंगा, तो बीमारी सोचने से नहीं पड़ेगा, जब समय आ जाएगा प्रारब्ध उपस्थित होगा तब वो अपने आप हो जाएगा, तब भागेगा अस्पताल में बचने के लिए। तो इसी तरह से सुख आएगा, तो सुख के लिए न चिंतन करना है और न काम करना है, इंद्रिय सुख के लिए। और इंद्रिय सुख चूंकि लक्ष्य है नहीं, वो आत्मा का सुख नहीं है, इंद्रिय का सुख है, तो इंद्रियों को तृप्त करने के काम में नहीं लगना चाहिए। वो अपने आप आएगा। खास करके इस संसार में इंद्रियों का सुख है, पुत्र कलत्र आदि के साथ होना, सुख रहना, खाना पीना, स्पर्श करना, यही सुख है इंद्रियों का। तो ये मिलता है अपने आप। देखा गया है कि सुकर आदि को भी स्त्री रखने का और पुत्र उत्पन्न करने का सुख मिलता है। जथा दुखम प्रयत्नम बिना लभ्यते तथा सुखम अपि लभ्यते। तस्मात् बुधो विवेकी एवं निश्चित्य तद इंद्रियकम सुखम न इच्छेत। इंद्रिय सुख की इच्छा न कर। प्रारब्ध भोगस्य अवश्यम भावित्वा तदर्थोद्यमे वृथा आयुर्व्यय न कार्यते। तो जब इंद्रिय सुख सुअर आदि को भी मिलता है तो इसका मतलब है कि अब तुच्छ है। नरके अपि से भी राघव कह रहे हैं किंचित अन्न पानादि जन्यम सुखम विद्यते, वहां भी सुख है। जैसे कारागृह है तो कारागृह में कैदी बंद रहते हैं, किसी को श्रृंखला पहनाई होती, सिंकर लगाए रहते हैं, बेड़ी हथकड़ी भी किसी किसी को लगा रहता है, लेकिन वहां भी भोजन की व्यवस्था रहती है। जिस समय भोजन मिलता है खाने को, उस समय वो कैदी सारा दुख भूल जाता है। तो कारागृह में पड़ा है फिर भी उसको कुछ देखने सुनने सुनने के लिए मिल जाती है चीजें। तो इसी प्रकार नरक में भी सुख मिलता है, स्वर्ग में भी तो है, अतः कहीं भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि देही ना, तो देही है, देही का अर्थ है देह वाला। जैसे कोई कर्म किया है विशेष तो उसके अनुसार देह मिला है, तो देह को चलाने वाला कर्म भी उसका है। देह मिलना है उसके लिए प्रमाण है कि उसको देह चलाने वाली वस्तुएं आगे मिलेंगी, इसलिए देहिना में कहा गया देह वालों को। भगवान ने जब देह दिया है तो उसके साथ ही देह कैसे चलेगा वो कर्म फल भगवान भेजते रहेंगे। देह के लिए जो देखना जरूरी है, सूंघना जरूरी है, स्पर्श करना जरूरी है, और देह के लिए जो खाना जरूरी है वो सब भेजा जाएगा। जैसे कैदियों के लिए जब सरकार कैदी बनाती है किसी को, तो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किस घर में रहेगा, वो सरकार ही सोचती है। तो कैदी अपने लिए घर उठाकर नहीं ले जाता है और न तो भोजन ले जाएगा। तो देही शब्द एक तथ्य की सूचना दे रहा है कि जब देह जिस प्रकार से मिला है तो देह को चलाने वाला सामान भी मिलेगा, चिंता नहीं करनी चाहिए। तो सर्वत्र मिलता है सुख इंद्रियों का, अतः उसको कमाने में, इकट्ठा करने में, संचय करने में वृथा आयु व्यय नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यह सिद्धांत कह करके और इसको दृष्टांत द्वारा बता रहे हैं। जब ऐन्द्रियकम सुखम तत् स्वर्गे नरके च भवति एव, यह जब शब्द का प्रयोग किया गया है और बाद में तत्। तो जो सुख इंद्रियों का है, इंद्रियों को इंद्रिय जो सुख है वो स्वर्ग में भी और नरक में भी मिलता है। तो संसार में सब लोग तो केवल इंद्रियों के सुख को इकट्ठा करने में अपनी सारी आयु खर्च करे, दिन भर बैठे रहते हैं दुकान में, काम में, सब जगह। लेकिन आत्मा की उन्नति के लिए एक मिनट भी काम नहीं कर रहे। जो वस्तुएं मिलेंगी उन्हीं वस्तुओं के प्रयास हो रहा है। तो ये संतोष सीखना चाहिए वास्तव में। ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम स्तोक में जदृशय व पतितम ग्रसेद आज गलो अक्रिय। शरीर निर्वाह मात्रम तु जथा लब्धेन कर्तव्य नित्या। शरीर निर्वाह है, जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष पूर्वक करना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि शरीर चलाने के लिए भोजन करना है कि भोजन करने के लिए शरीर चलाना है। ये दो थ्योरी है जो सब लोग में कहते हैं। खाना जीने के लिए है कि जीना खाने के लिए है, क्या है वास्तव में? जैसे हम पूछें कि आदमी जाकर के डीजल भरवाता है बस में या जीप में, तो डीजल भरवाने के लिए गाड़ी चलाई जा रही है कि गाड़ी चलने के लिए डीजल भरा जा रहा है? गाड़ी चलने के लिए डीजल भरा जा रहा है, तो जितना से बढ़िया से गाड़ी चल जाए उतना ही भरना चाहिए ना, कि पूरा भीतर भी आदमी के सीट पर भी इधर उधर से भर देना चाहिए डीजल, जितना से बढ़िया से चल जाए उतना ही भरना चाहिए। यह गाड़ी भी मनुष्य शरीर है, जितना से चल जाए जिससे इसका निर्वाह हो जाए उतना ही खाना चाहिए, और जब जो कुछ बहुत बिना प्रयास के बिना मांगे मिल गया उसी से बस निर्वाह करना चाहिए। ध्यान रखिए कि ये तो विशेष करके सन्यासियों के लिए बात कही जा रही है, नहीं गृहस्थों को भी इसमें से कुछ प्रतिशत लेना चाहिए। गृहस्थों को भी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र नहीं रहना चाहिए। साधु को तो 100% इसको लेना है, लेकिन गृहस्थ को भी कुछ प्रतिशत इसमें से लेना। ग्रासम सुमृष्टम वीरसम महांतम स्तोक एवं जद्रीक्षया एवं आपतितम ग्रसेद आज गुरु क्रिय। मनुष्य को चाहिए खास करके गृहस्थ महात्मा को कि वह आजगर हो जाए। आजगर का अर्थ है कि अजगर की वृत्ति में अस्तित्व है, आजगर हो करके मतलब अजगर की वृत्ति, अजगर का स्वभाव बना करके और पड़ा रहे। पड़ा रहने का मतलब यह नहीं कि अजगर जैसा सोया रहे, तो अजगर जैसे भोजन के लिए कोई नौकरी नहीं करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यू कहे सबके दाता रहा। अजगर का भोजन बहुत ज्यादा होता है। अजगर का ऐसे अर्थ ही होता है अज मन बकरा, गर मन गला, बकरा जिसके गले में अट जाए उसको अजगर कहते हैं। इतना बड़ा साफ होता है, इसीलिए आगे चलकर उसको महाही महाअही भगवान कह रहे हैं। भोजन बहुत ज्यादा है लेकिन काम बिल्कुल नहीं, काम धंधा अजगर नहीं करता है, पड़ा रहता है और प्रारब्ध बस कोई न कोई बकरा या कोई न कोई छोटा जीव आ ही जाएगा और उसको पकड़ लेता है और धीरे धीरे खा जाता है, और नहीं मिलता है तो बहुत दूर तक जाता नहीं है। अजगर जहां रहता है वहीं रहता है, आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे अजगर, बहुत दूर इधर उधर नहीं जाता है भोजन के लिए। जैसे मनुष्य देश परदेश सब जगह घूमता है अपना खर्चा जुटाने के लिए, वैसे वो नहीं होता। अजगर अजगर की वृत्ति वाला साधु ये अक्रिय उदासीन, अक्रिय होता तो उदासीन, क्रिया शून्य रहे, कोई काम न करे खाने के लिए। वृत्ति जुटाने के लिए कोई काम न करे, 24 घंटा केवल भगवान के भजन में रहे, यह अर्थ है अजगर जैसा। और ग्रास जैसा मिले वैसा ही खाए, हो सकता है कि अजगर को कभी केवल बिस्कुटिया भर मिले तो उतना ही बस एक आध कौर खा करके रह जाता है, या कोई छोटा सांप मिले उसको, या नेवला मिले, चूहा मिले, जो भी मिला अपन खा लिया। तो भोजन यहाँ ग्रास शब्द भोजन के लिए है। ग्रासम सुमृष्टम, भोजन चाहे खूब मीठा हो, मृष्ट का अर्थ होता है शुद्ध और मधुर, तो भोजन खूब स्वादिष्ट मिले तब भी, या विरसम या विगत रसम, बासी मिल जाए या रूखा सूखा या ज्यादा पीता पड़ा हो, जो मिले खा ले। महान तो और कभी कभी बहुत महान भोजन मिल जाए, महान मतलब भर पेट, कभी भर पेट में मिलेगा और कभी स्तोक, स्तोक माने छोटा। यहाँ पर सबसे छोटा भोजन की माप है भोजपुरी में माछी के मूड़ भर, सबसे छोटी इकाई भोजन की माछी के मूड़ी सबसे छोटा लगता है। कहते बड़े माछी के मूड़ी भर।